ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। संपत्ति शुद्धिकरण मनी लॉन्ड्रिंग निवारण तृतीय संशोधन विधेयक सहित चार विधेयक प्रतिनिधि सभा से पारित। बर्दिया से सुकुम्बासी को लाल पुर्जा वितरण शुरू। अंतर प्रदेश सार्वजनिक परिवहन का किराया 2% घटाने का परिवहन व्यवस्था विभाग का निर्णय। और यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के हमले में 18 यूक्रेनी नागरिकों की मौत। अब समाचार विस्तार से। सरकार द्वारा अध्यादेश के स्थान पर लाए गए संपत्ति शुद्धिकरण मनी लॉन्ड्रिंग निवारण सहित चार अलग अलग विधेयक प्रतिनिधि सभा से पारित हो गए हैं। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक ने सार्वजनिक खरीद द्वितीय संशोधन विधेयक 2083, संपत्ति शुद्धिकरण मनी लॉन्ड्रिंग निवारण तृतीय संशोधन विधेयक 2083, सहकारी प्रथम संशोधन विधेयक 2083 तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानों से संबंधित कुछ नेपाल कानूनों में संशोधन विधेयक 2083 को पारित किया गया। बैठक में प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की ओर से कानून न्याय एवं संसदीय मामला मंत्री शोभिता गौतम ने सार्वजनिक खरीद द्वितीय संशोधन विधेयक 2083 को पारित करने का प्रस्ताव पेश किया। इसी प्रकार अर्थमंत्री डॉ स्वर्णिम वागले ने धन संशोधन मनी लॉन्ड्रिंग निवारण तृतीय संशोधन विधेयक 2083 प्रस्तुत किया। वहीं सहकारी प्रथम संशोधन विधेयक 2083 पर चर्चा का उत्तर देते हुए भूमि व्यवस्था मंत्री प्रतिभा रावल ने कहा कि जमाकर्ताओं की बचत वापस दिलाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए सभी पक्षों के सहयोग की अपेक्षा है। इसी प्रकार स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानों से संबंधित कुछ नेपाल कानूनों में संशोधन विधेयक 2083 को स्वास्थ्य एवं खाद्य स्वच्छता मंत्री निशा मेहता ने पारित करने का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया। प्रतिनिधि सभा की अगली बैठक आषाढ़ 22 सोमवार को सुबह 11 बजे आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक में विनियोजन विधेयक 2083 के अंतर्गत 9 मंत्रालयों के विनियोजन शीर्षकों पर समूहगत चर्चा पूरी हो गई है। चर्चा में भाग लेते हुए सांसदों ने कहा कि बजट का मुख्य ध्यान रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन, औद्योगिक पुनरुत्थान, कृषि उत्पादन में वृद्धि, प्रतिभा पलायन रोकने, दलित समुदाय को राज्य की मुख्य धारा में लाने तथा जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने पर होना चाहिए। आज की बैठक में युवा, श्रम एवं रोजगार, सूचना एवं संचार, संस्कृति, पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन, शिक्षा एवं खेलकूद, स्वास्थ्य एवं खाद्य स्वच्छता, भूमि व्यवस्था, सहकारी एवं संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन, महिला बाल बालिका, लैंगिक एवं यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा, विज्ञान प्रविधि एवं नव प्रवर्तन तथा कानून न्याय एवं संसदीय मामलों से संबंधित विनियोजन शीर्षकों पर चर्चा हुई। इससे पहले राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक में सांसदों ने देश के समसामयिक मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित कराया। राष्ट्रीय सभा की अगली बैठक कल दोपहर 1:15 बजे के लिए बुलाई गई है। शिक्षा एवं खेलकूद मंत्री सस्मित पोखरेल ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ फीफा द्वारा अखिल नेपाल फुटबॉल संघ इन्फा पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने के लिए फीफा के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत का प्रयास जारी है। आज की मंत्रिपरिषद बैठक के निर्णय सार्वजनिक करते हुए सरकार के प्रवक्ता एवं शिक्षा मंत्री पोखरेल ने पत्रकारों के प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा कि मौजूदा समस्या के समाधान के लिए फीफा और एशियाई फुटबॉल परिसंघ के अधिकारियों को वार्ता के लिए आमंत्रित किया जा चुका है। इसी बीच आज की मंत्रिपरिषद बैठक ने गोरखा पत्र संस्थान के महाप्रबंधक पद पर कैलाली के हिकमत बहादुर रावल को नियुक्त करने का निर्णय लिया। सरकार के प्रवक्ता एवं शिक्षा मंत्री पोखरेल ने बताया कि बैठक ने सुरक्षण मुद्रण केंद्र के कार्यकारी निर्देशक पद पर मोरंग के देवराज ढुंगाना को नियुक्त करने का भी निर्णय किया। इसके अलावा मंत्रिपरिषद के राष्ट्रीय सदाचार नीति 2083 और राष्ट्रीय विज्ञापन नीति 2083 को स्वीकृति दी। नेपाल पुलिस के 8 अतिरिक्त महानिरीक्षकों एआईजी का तबादला किया तथा विशिष्ट संरचना संचालन एवं प्रबंधन विकास समिति के रिक्त कार्यकारी निर्देशक पद पर धर्मराज खड़का धनकुटा को नियुक्त करने के सहित अन्य कई निर्णय भी किए। करनाली राजमार्ग के दैलेक सड़क खंड में आज सुबह एक यात्री फोर्स वाहन के करनाली नदी में गिरकर डूब जाने से राहत एवं बचाव कार्य में कठिनाई हो रही है। नदी का जलस्तर बढ़ जाने और वाहन पूरी तरह पानी में डूब जाने के कारण उसे देखा नहीं जा सका, जिससे बचाव अभियान प्रभावित हुआ है। करनाली प्रदेश पुलिस कार्यालय के सूचना अधिकारी एसएसपी संतोष सिंह राठौर ने बताया, उनके अनुसार सुरखेत से कालीकोट जा रहा फोर्स वाहन आज सुबह दैलेह के चामुंडा बिंद्रा शैनी नगरपालिका 7 स्थित सांगेटाड़ा में करनाली नदी में गिर गया। पुलिस ने बताया कि लगभग 40 वर्षीय एक पुरुष का शव चट्टान में फंसी अवस्था में बरामद किया गया है। मृतकों की पहचान अभी नहीं किया जा सका है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन,
भाग्यवानी बाबु, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजू।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजू।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् बाउजू।
ओए, वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
हाँ, त पनि एनटीसी को सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटीसी को डे प्याक लिन *14# ह्यास डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। भूमि व्यवस्था सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय ने आज से बर्दिया जिले में भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र लाल पुर्जा वितरण अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत बढ़ैया ताल गांव पालिका 4 के 29 भूमिहीन दलित और भूमिहीन सुकुम्बासी परिवारों को लाल पुर्जा प्रदान किया गया। यातायात व्यवस्था विभाग ने कल से पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में कमी के बाद अंतर प्रदेशीय सार्वजनिक और मालवाहक वाहनों का किराया आज से 2% घटा दिया है। विभाग ने सार्वजनिक सूचना जारी कर बताया कि संशोधित किराया आज से लागू किया गया है। विभाग के अनुसार पिछली बार किराया समायोजन के समय डीजल की औसत कीमत 235.83 रूपये प्रति लीटर थी, जो गत अषाढ़ 17 से घटकर 193.83 रूपये प्रति लीटर हो गई है। इसी आधार पर स्वचालित प्रणाली के तहत नया किराया निर्धारित किया गया है। सूचना तथा संचार मंत्री डॉ विक्रम तिमल सिन्हा ने कहा है कि प्रवक्ताओं को राष्ट्रीय हित को केंद्र में रखकर सूचना का प्रसार करना चाहिए। आज सिंह दरबार स्थित सूचना तथा संचार मंत्रालय में आयोजित प्रवक्ता संवाद कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि विभिन्न मंत्रालयों और सरकारी निकायों के प्रवक्ता अपने अपने संस्थानों की ओर से सरकार के आधिकारिक प्रवक्ता होने के नाते महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे हैं। मंत्री डॉ तिमल सिन्हा ने कहा कि जो आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए वह समय पर उपलब्ध नहीं हो पाती, जबकि गोपनीय सूचनाएं अनधिकृत रूप से बाहर चली जाती है। उन्होंने संवेदनशील सूचनाओं के लीक होने से रोकने के लिए आवश्यक सावधानी बरतने पर जोर दिया। विशेष अदालत ने नेकपा एमाले के उपाध्यक्ष एवं पूर्व अर्थमंत्री विष्णु प्रसाद पौड़ेल के खिलाफ धन संशोधन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तीसरी बार 6 दिन हिरासत की अवधि बढ़ाकर जांच की अनुमति दी है। विशेष अदालत के न्यायाधीश नारायण प्रसाद पौड़ेल, हेमंत रावल और उमेश कोइराला की पीठ ने आज पौड़ेल को 6 दिन और न्यायिक हिरासत में रखकर जांच करने की अनुमति धन संशोधन अनुसंधान विभाग को दी है। भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी में आज से 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन शुरू हो गया है। बौद्ध धर्म, संस्कृति और धरोहर के संरक्षण तथा सतत पर्यटन संवर्धन पर केंद्रित इस सम्मेलन में नेपाल, भारत, चीन, श्रीलंका और फिनलैंड के बौद्ध विद्वान, धरोहर विशेषज्ञ, शोधकर्ता और शिक्षाविद भाग ले रहे हैं। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने गुरुवार तड़के बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमला किया, जिसमें कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई और 90 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। वह हमला हाल के महीनों में कीव पर हुए सबसे भीषण हमलों में से एक माना जा रहा है। यूक्रेनी अधिकारियों के अनुसार हमले में राजधानी के कई आवासीय इलाकों, बहुमंजिला इमारतों, एक होटल, अनुसंधान संस्थान, एम्बुलेंस केंद्र तथा अन्य नागरिक ढांचों को नुकसान पहुंचा है। एक 9 मंजिला आवासीय इमारत का हिस्सा ढह जाने से कई लोग मलबे में फंस गए हैं, जिन्हें निकालने के लिए राहत एवं बचाव अभियान जारी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदोमिर जेलेंस्की ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि बचाव दल मलबे में फंसे लोगों की तलाश कर रहे हैं और घायलों को सहायता पहुंचाई जा रही है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों से यूक्रेन की वायु रक्षा प्रणाली को और मजबूत करने की अपील की है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संपत्ति शुद्धिकरण, मनी लॉन्ड्रिंग निवारण, तृतीय संशोधन विधेयक सहित 4 विधेयक प्रतिनिधि सभा से पारित। बर्दिया से सुकुम्बासी को लाल पुर्जा वितरण शुरू। अंतर प्रदेश सार्वजनिक परिवहन का किराया 2% घटाने का परिवहन व्यवस्था विभाग का निर्णय। और यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के हमले में 18 यूक्रेनी नागरिकों की मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिन्दी समाचार समाप्त हुए। 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।